الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹاپک ہے توحید اور شرک سے ریلیٹڈ، اور ہو سکتا ہے کہ اس ٹاپک کے اندر دو سے تین کلاسز لگ جائیں۔ اس شرک والا جو ٹاپک ہے، یہ وہ ٹاپک ہے جس کو ہم لوگ سنتے ساتھ ہی سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ کوئی اور ہے جو شرک کرتا ہے، میں تو نہیں شرک کرتا، میں تو بالکل اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں۔ باقی لوگ ہیں، وہ کرسچنز ہو گئے، ہندوز ہو گئے، وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، میں تو شرک نہیں کرتا۔ آف کورس اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہوا ہے، سورہ یوسف کی آیت 106 کے اندر، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور نہیں ایمان رکھتے لوگ ان میں سے اکثریت جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ وہ کچھ نہ کچھ شرک ضرور کرتے ہیں۔ نہیں ایمان رکھتے یا نہیں ایمان لاتے اللہ کے اوپر لوگ، مگر یہ کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی شرک ضرور کرتے ہیں۔ ساتھ اللہ پہ ایمان کون لاتے ہیں؟ مسلمان لاتے ہیں ایمان، تو ان کے اندر بھی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اکثرہم، ان کی اکثریت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شرک ضرور کرتی ہے۔ اس آیت سے تو ایک طرح کا الرٹ جنریٹ ہو جانا چاہیے ہمارے دماغ کے اندر کہ یہ مخاطب ہم ہیں، ہماری بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، اکثر ہیں، میجورٹی ایسے ہیں جو کہ کوئی نہ کوئی شرک ضرور کر بیٹھتے ہیں۔ اور شرک کیا چیز ہے؟ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس گناہ کو تو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے سوا اگر کوئی گناہ ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ اگر اس نے چاہا تو وہ بخش دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ اس گناہ کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا کہ کوئی میرے ساتھ شرک کرے۔ سورہ نساء کی آیت، اور یہ ایک دفعہ نہیں دو آیات کے اندر آیا ہوا ہے، آیت 48، آیت 116۔ پہلی بات یہ انڈرسٹینڈ ہو گئی کہ شرک کے بارے میں یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اکثر لوگ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی شرک ضرور کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میجورٹی مسلم اس گناہ میں انوالوڈ ہو گئے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اس گناہ کو تو میں ہرگز معاف نہیں کروں گا، تو یہ تو اور زیادہ سیوریٹی ہو گئی کہ ایک تو چانس ایگزسٹ کرتا ہے بہت زیادہ کہ میجورٹی مسلمان اس گناہ میں انوالوڈ ہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس گناہ کو میں ہرگز معاف نہیں کروں گا، ہاں باقی گناہ جو ہیں وہ میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، وہ میرے اوپر ہے۔ یہ بھی کوئی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لازماً وہ گناہ معاف ہوں گے۔ تو یہ تو ہو گئی اس ٹاپک کی سیویریٹی، اس ٹاپک کا سیریسنس ہو گیا کہ یہ ٹاپک ڈائریکٹلی ہمیں خطاب کر رہا ہے، نہ کہ یہ کہ کوئی ڈسٹنٹ قوم، کوئی ڈسٹنٹ لوگ ہیں، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یا وہ لوگ جو مر کھپ گئے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ہم لوگوں کو ڈائریکٹلی یہ ٹاپک ایڈریس کر رہے ہیں۔ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ سورہ لقمان کے اندر جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں، ان کے اندر پہلی نصیحت اللہ تعالیٰ نے جو کاپی کی ہے اس کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں۔ اب یہ ایسا گناہ کیوں ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیوں نہیں کرنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنیاد رکھی ہے ہمارے دین کی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، توحید پرست ہی پیدا ہوتا ہے پیدائشی طور پہ، بعد میں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو دوسرے دین کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ اور تمام نیکیاں، تمام گناہ، وہ تمام ٹاپکس بعد کی بات ہے۔ جو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جس کو بنیاد بنایا ہے، جو آپ کہہ لیں پوائنٹ نمبر ون جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے توحید قرار دیا اسے کہ تم نے میرے ساتھ کوئی شرک نہیں کرنا، میں واحد ہوں، اکیلا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پالا، جس نے تمہاری پروٹیکشن کی، جس نے تمہیں کوئی آزمائش میں ڈالا، جس نے تمہیں کوئی خیر دی، یا جس نے تمہیں کسی مصیبت سے، کسی بیماری سے شفا دی، وہ میں اکیلا ہوں۔ اب اگر اس کے اندر بندہ کسی اور لوگوں کو بھی، کسی اور ہستیوں کو بھی، کسی اور چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے مد مقابل لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی باتیں بتائی ہیں دین کے اندر اور فطرت کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، یہ نیچر کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نہ بھی کسی کو سمجھا رہا ہو، نہ کوئی اگر سوسائٹی سے نہ بھی انفلوئنس ہو، تو وہ پیدائشی طور پہ اس کے دین، اس کے ذہن کے اندر اگر کوئی تصور خدا آئے گا، اس کو کوئی بھی دین نہ سکھایا جائے گا، کوئی ریلیجن، ایون اسلام قرآن بھی نہ پڑھایا جائے، उसके जहन में अगर कोई तसव्वुर आएगा अनडिस्टॉर्टेड तसव्वुर, तो वो तौहीद ही का तसव्वुर होगा। जो चीज़ अल्लाह ताला ने फितरत में भी डाली है, और अल्लाह ताला कहे मैंने निशानियाँ अपनी रखी हैं, एक पहली बात के ऊपर ही अगर कोई बंदा टेढ़ा पड़ गया तो बस ये गुनाह मैं नहीं माफ़ करूँगा, इसके सिवा अगर कोई गुनाह हुए तो अगर मैंने चाहा तो मैं माफ़ कर दूँगा, अगर मैंने चाहा तो मैं इन गुनाह को माफ़ कर दूँगा। ये जो दो लफ्ज़ हैं तौहीद और इसका ऑपोजिट या इसका अक्स जो है वो शिर्क, इन दोनों लफ्ज़ों का मतलब क्या? शिर्क तो हो गया कि किसी को किसी के साथ मिला लेना, शरीक कर लेना, हम तो इस्तेमाल करते हैं। तौहीद जो है ये वाओ हा दाल, ये इसका रूट है। वाहद कहते हैं टू यूनिफाई, इकट्ठा करना, जमा करना, एक बनाना। वाहिद भी इससे है, आहद भी इससे ही है, दोनों अल्लाह ताला के नाम है। वाहिद का क्या मतलब होता है? एक। आहद का क्या मतलब होता है? यूनिक। कुल हुवल्लाहु आहद, कह दो कि अल्लाह, हम तर्जमा तो कहते हैं कि अल्लाह एक है, लेकिन असल में इसका तर्जमा क्या है? अल्लाह ताला वो एक तो है लेकिन वो यूनिक है, उस जैसा कोई और नहीं है। वाहिद के बाद तो सेकंड आता है, ये तो फर्स्ट था, हाँ सेकंड नंबर पे भी कोई है, फिर थर्ड पे भी कोई है। अहद कहते हैं उसको कि जिसका कोई सानी नहीं है, कोई रनर अप भी कोई नहीं है उसके मुकाबले में, वो बिल्कुल अकेला है। तौहीद का लफ्ज़ यहाँ से निकला है, शेख आपको बता दिया इस तरह। अब अकीदा जो होता है, अकीदा जो लफ्ज़ है ये इसका भी रूट है, वो है अक्त, एन काफ दाल। अक्त का मतलब होता है गिराह को कहते हैं, बांधने को कहते हैं। तो अकीदा वो चीज़ जिसको आप अपने साथ पक्की तरह मजबूती के साथ अपने साथ बांध लें जिसे, और उसके ऊपर फिर आपका ईमान हो, उसके ऊपर आपका ईमान हो। अल्लाह ताला ने कुरान को इस तरह नहीं नाजिल किया कि पहला चैप्टर जो होगा कुरान का या जो पहली आयात होंगे उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले बुनियादी बात होगी कि अल्लाह एक है, तो पहले सारी बातें अल्लाह से मुतल्लिक हो जाएं, बात ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि अल्लाह ताला ने आखिरत का दिन आना है, अल्लाह ताला ने उसको हिसाब किताब के लिए किया, अब सारी बातें आखिरत से रिलेटेड हो जाएं। उसके बाद अल्लाह ताला जिक्र कर दें कि हदायत के लिए तुम लोग गुमराह ना हो मैंने रसूलों का सिलसिला जारी किया। अब रसूलों का सारा जिक्र आ जाए एक दफ़ा, फिर किताबों का जिक्र आ जाए उसके बाद, फिर इस तरह और फरिश्तों का जिक्र आ जाए। इस तरह तो कुरान ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुरान के आयात जो हैं वो बिल्कुल मिक्सअप हैं। अल्लाह ताला ने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा वाइड ओपन किया हुआ है, तो उन तमाम चीज़ों को अगर जमा किया जाए तो छः बातें बनती हैं। ईमान बिल्ला, अल्लाह के ऊपर ईमान, ईमान बिल आखिरा, आखिरत के ऊपर ईमान, ईमान बिल रसालत, रसूलों पर ईमान, ईमान बिल किताब के अल्लाह ताला ने जो आसमानी किताबें उतारी हैं वो तमाम की तमाम, उन सब के ऊपर ईमान, ईमान बिल मलाइका, फरिश्तों के ऊपर ईमान, और कदर और कज़ा, तकदीर, डिवाइन डेस्टिनी, इन चीज़ों के ऊपर ईमान हो। ये छः बातें हैं अकीदा, और ये सबका होगा। इसके ऊपर आपका ईमान कितना, आपने कितना मान लिया इस चीज़ को, वो लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है, वो लेवल बहुत वेरी कर सकता है। हो सकता है कुछ ज़ीरो लेवल के ऊपर हों, कुछ बहुत हाई लेवल के ऊपर हों, और ये हम जज नहीं कर सकते। हम बाकी चीज़ें तो जज कर सकते हैं, अच्छा ये देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा मोटा है तो वज़न करना शुरू हो जाए सबका, किसी की वेस्ट किस ज़्यादा है, हाइट किसकी ज़्यादा है, ये तमाम चीज़ें जिनका हमें स्केल पता है, इसको हमें केजीज में नापना होता है, इसको हमने इंचेस के अंदर या मिलीमीटर या सेंटीमीटर या फीट जो मर्जी है उसके अंदर हमने नापना है। ईमान को किस तरह नापना है हमने, हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है, ना कोई यूनिट है हमारे पास, ना मेजरिंग कोई टूल है हमारे पास कि इस बंदे के अंदर दिल और कल्ब के अंदर कोई ईमान है या खाली बैठा हुआ है उसे, और ना ही हमारे किसी किस्म के मेडिकल टेस्ट के अंदर आ सकता है। बॉडी के एनाटॉमी के तमाम टेस्ट हो गए, उनके अंदर ये चीज़ नहीं आ सकती कि इस बंदे के अंदर ईमान था या नहीं था। तो जिस तरह मैंने बता दिया कि कुरान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो है, अल्लाह ताला ने पॉइंट्स में बातें नहीं की हैं, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, इस तरह करके बातें नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ताला ने हदायत के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ बातों को, उनमें से अगर अखज़ किया तो इस तरह बात हो गई। अब पहली जो बात है ईमान बिल्लाह, क्योंकि टॉपिक है तौहीद और शिर्क से रिलेटेड, तो इस बात को अंडरस्टैंड करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। या तो हम तौहीद को सारे को अंडरस्टैंड कर लें तो जो कुछ पीछे बच जाएगा वो क्या होगा? शिर्क होगा। या हम शिर्क को अंडरस्टैंड कर लें तो जो कुछ पीछे बच जाएगा वो होगा तौहीद होगा। तो दोनों में से कोई एक चीज़ अडॉप्ट की जा सकती है। जो बुक्स लिखी गई हैं स्कॉलर्स ने, उलमा ने जो बुक्स लिखी हैं इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड, उन्होंने इसके अंदर जितनी भी आयात हदीसें बनती हैं उनको नोट डाउन करने के बाद उनकी ग्रुपिंग कर ली है लोगों के समझने समझाने के लिए, तो उसके अंदर इस तरह के टर्म्स भी यूज़ हुई हैं, और हर स्कूल ऑफ थॉट ने या हर किस्म के आलम दीन ने अपने हिसाब से उसको अंडरस्टैंड किया, और कुछ ने प्राणों की बातों को ही आगे फर्दर और ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया, और कुछ ने कुछ और चीज़ें एडअप कर दी कि हमारे नज़दीक ये कैटेगराइजेशन ज़्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पे एक टर्म यूज़ की जाती है, एक क्लासिफिकेशन तौहीद की है, तीन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। तौहीद रबूबियत, तौहीद इस बात की कि अल्लाह ताला खालिक भी है और रब भी है, सिर्फ ये नहीं कि पैदा किया है बल्कि वो पाल भी रहा है, थ्रू आउट नशोनुमा कर रहे हैं। एक है तौहीद अलूहियत कि वो इलाह वही है, अकेला वही है, बंदगी उसकी करनी है, माबूद वही है, उसी की बात माननी है, मतलूब भी वही है, मकसूद भी वही है, महबूब भी वही होना चाहिए। लास्ट क्लास के अंदर मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, इलाह के कॉन्सेप्ट को, आयतुल कुर्सी के अंदर। और तीसरी कैटेगराइजेशन हो गई तौहीद अस्माओ सिफात। इसी तरह ही इस तरह के भी हैं कि शिर्क की कैटेगराइजेशन भी की हुई है, शिर्क जली, शिर्क खफी। जो मेरी अपनी पर्सनल सोच है वो ये है कि बजाय ये कि मुश्किल मुश्किल टर्म्स याद कराऊँ, अब यार जो मैंने टर्म्स बोली हैं मैं कहूँ आप लोग रिपीट करें तो रिपीट भी नहीं होने वाली हैं कि रबूबियत, अलूहियत, अस्माओ सिफात और इस तरह की जो और भी डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं, तो हमें इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। असल मकसद क्या है, वो तमाम हदीसें आयात कवर अप हो जाएँ। वैसे भी बताया ये डिवाइन टॉपिक्स नहीं है, ये तौहीद रबूबियत या शिर्क रबूबियत, शिर्क अलूहियत, तौहीद रबूबियत या तौहीद अलूहियत, ये अल्फाज जो हैं ये डिवाइन नहीं है, अल्लाह ताला ने नहीं हमें दिए। कुरान सबसे आसान किताब है समझने के लिए, अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान के अंदर वलकर यसर नल कुरान अल ज़िक्र फहल में मुद्दकर, हमने तज़क्कुर के लिए याद दहानी के लिए हमने कुरान को इंतहाई आसान बना दिया है। तो कोई है जो सोचे समझे, तो इसको कुरान को सबसे पहले किस लोगों ने समझा था, किसको हमने समझा था, अरबों ने समझा था। वो लोग अनपढ़ जाहिल थे, पढ़े लिखे वो थे नहीं, ना पढ़ना जानते थे ना लिखना जानते थे, और उनमें से भी अल्लाह ताला ने जिसको चुना था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना था, दुनियावी एतबार से वो भी इलिटरेट थे, वो भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अब ये बातें जो हैं ये खाम खा हमारे यहाँ बहुत कुछ मसले कैसे हैं जो इस बात को ना इस बात के ऊपर सेंसिटिव हो जाते हैं कि ये रसूल सल्लम की तौहीन की जाती है। ये कहना कि रसूल सल्लम पढ़े लिखे नहीं थे ये आप सल्लम की तौहीन है, जबकि ये तौहीन नहीं है, ये उस मौजे का जवाब है। रसूल सल्लम के ऊपर क्या क्या एतराज़ किया करते थे कि ये किसी आलम दीन से सीख के आ जाता है, किसी ईसाई के पास से या किसी यहूदी के पास से आके हम पे रोब जमाते हैं, किसी अजमी आलम को ग़ुलाम बनाया हुआ उससे आके सीखते हैं, हम पे आके रोब झाड़ते हैं। अगर अल्लाह ताला की तरफ से रसूल सल्लम को पढ़ना लिखना आता होता तो वो इस बात का एतराज़ करते कि ये पढ़ के आए हैं, उनको पढ़ना लिखना आता ही नहीं था। और आपको सीरत के जितने भी वाक़यात मिलेंगे, जब वही आती थी तो रसूल सल्लम कातिब वही को बुलाया करते थे, आके वही लिखें। और जो इवन बड़े बड़े जो माहदे हुए हैं सुलह हुदैबिया मिसाल के तौर पे, वो किसने लिखा था, अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने लिखा था। और जब मुश्रिकीन की तरफ से एतराज़ हुआ था कि आप सल्लम टर्म्स जो लिखवा रहे थे तो बताया लिखवाया जाए कि ये माहदा कुरैश मक्का और मोहम्मद रसूलल्लाह के माबैन हो रहे हैं, तो उसके ऊपर एतराज़ किया था उन्होंने कि भाई हम तो आपको रसूल मानते ही नहीं हैं, अगर मानते होते तो ये हम झगड़ा करते आपके साथ। इसलिए उन्होंने कहा था कि आप ये लिखें कुरैश मक्का और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये लिखें। जब रसूल सल्लम ने हज़रत अली से कहा था कि अली लिखो इस तरह, तो हज़रत अली ने इनकार कर दिया था मैं तो नहीं लिख सकता, तो आप सल्लम ने क्या कहा था, अच्छा बताओ लिखा कहाँ पर हुआ है, उस जगह इशारा करो। उन्होंने जब बताया कि ये लिखा हुआ है तो आप सल्लम खुद अपने अंगूठे से मिटाया था उसे फिर, और हाथ पकड़े कहा था अब यहाँ पर लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो ये तमाम जो सीरत के वाकयात हैं ये इस बात का प्रूफ है कि रसूल दुनियावी एतबार से पढ़े लिखे नहीं थे, और यही ये इस मौजे के प्रोटेक्शन अल्लाह ताला ने की थी, वरना तो एतराज़ साफ था कि हाँ ये पढ़ के आए हुए हैं। जिस तरह अभी भी बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है कुरान का कि ये आया ठीक है या नहीं ठीक, वो एट्रीब्यूट करते हैं कि ये नहीं, ये पहले ना एरिस्टोटल जो था ये उसके ख्याल में ये था, नहीं जो प्लूटो था उसने ये राय दी थी पहले, इससे पहले। तो उनकी बातों का भी यही जवाब है कि वो उस दौर के जो फ़लसफे वो जो लैटिन ग्रीक लैंग्वेजेस के अंदर थे वो तो रसूल सल्लम पढ़ने ही नहीं जानते थे उनको, तो ये तो बात का जवाब बनता ही नहीं। और ना ही अल्लाह ताला की तरफ से एक और प्रोटेक्शन क्यों थी कि रसूल सल्लम ने कभी ट्रैवल ही नहीं किया था, सवाए वो बचपन या वही से पहले जो एक आध शाम के चक्कर थे उसके बाद ट्रैवल किया ही नहीं। और आपको ये भी मैंने बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन समंदर तक नहीं देखा हुआ था, तो इतनी जगह पर कन्फाइन रहे, ना कोई इल्म हासिल किया, ना कोई उनका टीचर रहा हुआ था, तो उसके बावजूद ऐसा कलाम आगे आगे से, तो ये उस बात का सबूत था कि ये इनका अपना नहीं है बल्कि इनके ऊपर वही हुई है। तो अल्लाह ताला ने कुरान को बहुत आसान करके पेश किया है, मुश्किल टर्म्स नहीं है, तो हम भी इसको आसान करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि दो किस्म की क्लासिफिकेशंस बड़ी बना दी, एक बड़ा शिर्क एक छोटा शिर्क। शिर्क अकबर कह लें, शिर्क असगर कह लें, या ये भी नहीं याद पड़ता तो बड़ा शिर्क छोटा शिर्क ये भी इनफ है, क्योंकि असल चीज़ यहाँ पर और यहाँ पर समझना है, ना कि ये के टर्म्स याद हों। तो सबसे बड़ा शिर्क क्या है, इसकी फॉर्म्स हैं। वैसे तो शिर्क होता है कि किसी को डिनाई नहीं आप कर रहे, उसके साथ किसी को और भी अटैच कर रहे हैं। इसको हम डिनाई नहीं कर रहे, इसके साथ किसी और को अटैच कर रहे हैं। अब ये दो हो गए हैं या तीन हो गए हैं या चार पांच या बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ये वो फॉर्म हो सकती है इसकी। तो कुफर की बात अभी नहीं हो रही। कुफर क्या है कि माना ही नहीं सिरे से, एक्सेप्ट ही नहीं किया हमने कि ये कोई था, इसकी कोई हैसियत थी। सूरह जासिया की आयत 24 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह ताला का उनका जिक्र है। वकालू, और वो ये कहते हैं, मा हिया इल्ला हयात दुनिया नमूतु व नाहिया, और उनका ये कहना होता है ज़िंदगी जो है बस वो यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है, और ये जो हम मरते हैं और जो हम जीते हैं रोज़ाना, वमा युहलिकुना इल्ला दहर, और हमें जो मारता है, जो हम एक ज़माने में हम पैदा हुए फिर उसके बाद एक एज के बाद हम मर जाएंगे, ये सिर्फ ज़माने की गर्दिश है। दहर कहते हैं टाइम को, कहते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं। तो ये ज़माने की गर्दिश है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और ये गर्दिश अयाम है ये, अदरवाइज कोई हस्ती नहीं है जिसने हमें पैदा किया था या हमें मारेगी, या हम पैदा हुए या जो हम मरेंगे, ये सब कुछ जो है ये ज़माने की गर्दिश है बस। विद एक्सीडेंट सब कुछ हुआ, ये जो एथियस्ट स्कूल ऑफ थॉट है ये उसका अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कुरान के अंदर, क्योंकि कुरान तो हमेशा हर दौर के लिए आया था। तो विद टाइम जो जो भी अकीदे गलत आते जाएंगे अल्लाह ताला ने सबको कवर अप करना था। एथियस्ट कौन होते हैं, जो कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं कि गॉड नहीं है। एथियस्ट की एक और फॉर्म होती है जो ज़रा कम हार्श होती है, उन्हें बोलते हैं एग्नोस्टिस। एग्नोस्टिस वो होते हैं जो ये नहीं कहते कि गॉड नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं कहते कि गॉड है। वो सिंपल ये कहते हैं कि जो हमारा नॉलेज का स्पैन है, जो हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट फिट नहीं आता कहीं पर। हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है, हमारे पास आंखें दी हैं, हमारे पास और कौन सी सेंस हो गए, हम फील कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं, ये फाइव सेंसेस में ये कहीं बात फिट नहीं होती। ना गॉड की नज़र आते हैं हमें, ना हम गॉड को फील कर सकते हैं, ना गॉड को हम स्मेल कर सकते हैं, ना गॉड को हम सुन सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक जो है ये आउट ऑफ डिस्कशन है। क्लासिकली स्पीकिंग जो साइंस है वो भी गॉड को डिनाई नहीं करती, वो कहती है कि ये साइंस के टॉपिक में नहीं आता, ये या आउट ऑफ स्कोप ऑफ साइंस है, उनका ये दावा है। लेकिन एथियस वो है जो कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं कि गॉड नहीं है। जो पहले क्लासेस गुजर चुकी हैं उसके अंदर मैं इस टाइप की टाइम आफ्टर टाइम एग्जांपल्स देता आया हूँ कि इस टाइप की एग्जांपल्स कौन कौन सी बनती हैं। जैसा फॉर इंस्टेंस मैंने एक एग्जांपल दी हुई है पहले भी कि स्टिगमंड फ्रॉयड जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसका फादर कहलाता है, और बहुत पुरानी बात नहीं है, इसे ये पिछली सदी की बात है, ये लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के दौर की बात है। वर्ल्ड वॉर टू के बस कुछ अर्से बाद इसकी डेथ हुई थी, तो बहुत पुरानी बात नहीं है ये। स्टिगमंड फ्रॉयड रेस के एतबार से ये ज्यू था। वैसे इसकी बुक है द फ्यूचर ऑफ इल्यूजन, उसके अंदर उसने ये बात मेंशन की हुई है कि वो लोग जो ये बिलीव करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट था, तो उसने कहा वो लोग जो बिलीव करते हैं कि एक गॉड है, और ये बिलीव करना है कि एक डेवल है, एक डीमन है, और ये बिलीव करना है कि लाइफ आफ्टर डेथ है, वो ये असल में एक ज़हनी बीमारी में पड़े हुए हैं, पता नहीं किन दुनिया में रहते हैं, क्या ख्याल आते हैं इनके ज़हनों में आते रहते हैं। तो इस टाइप की जो कैटेगरी के जो लोग हैं जो कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं गॉड की एग्जिस्टेंस को, वो आते हैं इसके अंदर। सिर्फ डिसबिलीफ इन गॉड या सिर्फ एथियसिज्म के ऊपर ही अलग एक टॉपिक दिया जा सकता है, लेकिन अभी क्योंकि मकसद कुछ और है इससे आगे कंटिन्यू करना, और फोकस हमारा अपने ऊपर होना चाहिए। तो नंबर वन ये हो गया कि गॉड को माना ही नहीं। दूसरे लेवल की गुमराही क्या हो गई कि गॉड के साथ एक और गॉड को मान लिया। जो जादू से रिलेटेड लेक्चर्स थे उनके अंदर मैंने समझाया था कि जो पारसी हैं असल में इनका रिलीजन है ज़ोरोअस्ट्रियंस। इनके यहाँ दो गॉड्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, डुअलिज्म, एक गॉड ईवल है, एक गॉड गुड का गॉड है। दोनों गॉड हैं, दोनों का झगड़ा चल रहा होता है, दोनों लड़ रहे होते हैं, दोनों की अपनी अपनी फोर्सेज हैं, दोनों के अंदर अपनी ताकत है। तो जादू वाले लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इबलीस की तो खैर कोई हैसियत नहीं है अल्लाह ताला के आगे, वो तो एक मखलूक है, और अल्लाह ताला जब चाहे उसके हयात ख़त्म कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ढील दी तब उसके अंदर मैंने आयात और चीज़ों को कंपैरिजन करके बताया था। तो जिनको हम पारसी बोलते हैं वो बेसिकली ज़ोरोएस्ट्रियंस ही के बिगड़ी हुई शक्ल है, कि वो वहाँ से आए थे माइग्रेट करके। जब इस्लाम फैला था उस दौर के अंदर, तो इस्लाम जब फैल रहा था तो जो ईरान उस दौर का जो पर्शियन एम्पायर था, वहाँ से जो लोग भागे थे, जो पारस से भाग के लोग हिंदुस्तान आए थे, तो हिंदुस्तान में उनका नाम पड़ गया था पारसी। इनके यहाँ जो दो गॉड्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, अल्लाह ताला ने उस कॉन्सेप्ट को भी रद्द किया हुआ है कुरान के अंदर। सूरह नहल की आयत 51 के अंदर फरमाया हुआ है, वकाल अल्लाह, और कहा अल्लाह ने, ला तत्तखिज़ु इलाहैन इस्नैन, मत बनाओ अपने लिए दो इलाह, दो इलाहों का कॉन्सेप्ट अपने लिए मत पैदा करो तुम लोग। इन्नमा हुआ इलाहुन वाहिद, वही तो है, बेशक वही तो है तुम्हारा एक ही इलाह, वाहिद है वो। फ़ैया फ़रहबून, तो सिर्फ़ और सिर्फ उसी का ही खौफ रखो, डर रखो तो सिर्फ उसी का रखो। फिर इसकी एक और बिगड़ी हुई शक्ल क्या हो गई, कि ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी के अंदर जिस तरह है कि एक नहीं बल्कि आप थ्री मोड्स ऑफ गॉड हैं, और इतना कॉम्प्लिकेटेड किस्म का वो कॉन्सेप्ट है कि आप जब भी देख लें कि कोई मुनाजरा होता है, शेख अहमद इदाद की जो पुरानी वीडियोज़ होती थी वो, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की अगर आपको सुनने को मिले वो, कुछ अर्सा पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था द रोड टू मक्का, मोहम्मद असद की, जो कि जू रिवर्टेड टू इस्लाम थे, उनका भी एक क्रिश्चियन के साथ जो बात हुई थी, तो क्रिश्चियन ने उनसे कहा कि तुम जू थे, तुम्हारा नेचुरल कन्वर्जन जो होनी चाहिए थी वो क्रिश्चियनिटी की तरफ होनी चाहिए ना कि इस्लाम की तरफ। तो उन्होंने भी ये कहा था कि मैं अगर तुम मेरा एक सवाल का जवाब दे दूँ तो मैं गारंटी करता हूँ मैं अभी क्रिश्चियन हो जाऊँगा। उसने कहा बताओ क्या है, उन्होंने कह दिया कि आप मुझे सिर्फ ट्रिनिटी समझा दें। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है कि इवन क्रिश्चियंस खुद भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो क्या है कि गॉड एक है लेकिन उसके थ्री इमेजेस भी हैं, वो एक वक्त में एक भी है और एक वक्त में वो तीन अलग हस्तियां भी हैं। गॉड क्या, एक तो असल गॉड हो गया, एक गॉड द मदर और एक गॉड द सन, या जीसस क्राइस्ट ईसा अलैहिस्सलाम को वो कहते हैं। कुरान के अंदर इस चीज़ का जिक्र आता है। फिर ओवर द ईयर्स इनके अकीदे जब चेंज हुए तो उन्होंने गॉड द मदर को या मैरी को या हमारे हिसाब से मरियम सलामुन अलैहा उनको हटा के जिब्राइल को बना दिया, गैब्रियल बाइबल में कहते हैं या होली गोस्ट बोलते हैं उसे, उनको एडअप कर दिया, अल्लाह ताला ने उसको भी रद्द किया है। या अहलुल किताब, ओ ए अहले किताब, ला तगलू फी दीनकुम, अपने दीन में गुलव मत करो, बढ़ा चढ़ा के बातों को मत बयान करो। वला तकूलू अलल्लाह इल्लल हक, और अल्लाह के लिए वो बातें मत को सवाई ये कि जो सिर्फ और सिर्फ हक हैं। इन्नमल मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूल अल्लाह, बेशक मसीह या ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के रसूल थे। वकलमतुन अलकाहा इलल मरियम, जिसको वो कलमा थे अल्लाह का जिसको अल्लाह ताला ने भेजा था मरियम की तरफ। व रूहन मिनहु, और अल्लाह की तरफ से वो एक रूह थे। फ़ामिनु बिल्लाह व रसूल ही, पस ईमान ले आओ अल्लाह के ऊपर और उसके रसूल के ऊपर। वला तकूलु सलासा, और हरगिज़ ये मत कहो कि खुदा तीन है, ट्रिनिटी की बात मत करो। पहला हो गया कि खुदा का माना ही नहीं, दूसरा हो गया कि दो किस्म के खुदा घर लिए, एक गुड है एक ईवल है। फिर तीसरा ये हो गया कि खुदा के तीन कॉन्सेप्ट आ गए, थ्री इमेज आ गए, ट्रिनिटी आ गया। और ये बढ़ते बढ़ते इसकी इंतहा क्या है, इसकी इंतहा हिंदू माइथोलॉजी के अंदर, हिंदू फिलॉसफी के अंदर ये है कि खुदा ने जब कायनात को बनाना था, अब मैटर तो एग्जिस्ट नहीं करता था, तो खुदा ने किसने क्रिएट किया, खुदा ने खुद रूप इख्तियार कर लिया कायनात का, खुदा ने खुद रूप इख्तियार कर लिया कायनात का, वो डिफॉर्म हुआ, उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया इनटू दिस अर्थ, सन मून, इसकी क्रस्ट, वाटर, इसके ऊपर लाइफ थी, एवरीथिंग। ये हिंदू माइथोलॉजी के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, जिसको अगर हम उर्दू के हिसाब से बोलेंगे तो इसका नाम होता है हमाउस्त, और अगर इंग्लिश के हिसाब से बोलेंगे तो उसको बोलते हैं पैंथियज़म। हर चीज़ खुदा है, हर चीज़ खुदा है। इसलिए जो हिंदुओं के यहाँ बिल्कुल जो जाहिल किस्म का लेवल होगा उसके अंदर वो हर चीज़ की इबादत कर रहे होंगे, चाहे गाय हो, चाहे वो सांप हो, चाहे वो दरिया बह रहा हो, चाहे वो दरख्त हो, वो हर चीज़ को खुदा का अक्स समझेंगे। वो हिंदुस्तान को भी, जो ज़मीन है उसको भी खुदा का दर्जा देते हैं, वो अपने पेरेंट्स को भी भगवान का दर्जा देते हैं। तो वो हर चीज़ को जो है वो ले आते हैं इसी कैटेगरी के अंदर कि ये खुदा का ही अक्स है, ये पैंथियज़म या हमाउस्त। पैंथियज़म का जो बिल्कुल ऑपोजिट था या तौहीद है उसको बोलते हैं मोनोथियज़म। और इसका बिल्कुल जो इनवर्स हो गया कि हर चीज़ ही खुदा है, सबसे बदतरीन किस्म का शिर्क वो हो गया पैंथियज़म। फिर एक और शिर्क जो यहूदियों ने किया था एक ख़ास टाइम के अंदर, वो ये था कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह दिया था उन्होंने। पिछले सेमेस्टर के अंदर वो जो टाइम लाइन ऑफ बनी इसराइल को जिक्र किया था उसके अंदर ये मैंने बताया था कि कब किस ज़माने के अंदर और ये क्यों उन्होंने इस शिर्क को अडॉप्ट किया था। तो ये शिर्क की वो शक्ल है जो बदतरीन शक्ल है कि फिज़िकली खुदा और बना लिए, फिज़िकली कि एक ये है जिस तरह ये मुकम्मल है इस तरह ये भी मुकम्मल है, इस तरह खुदा और बना लिया। ये तो हो गया कि खुदा के बराबरी में किसी को उठा के ले आए, फिर एक हो गया कि खुदा के बराबरी में नहीं लाए लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप डाउन ले आए, एक स्टेप डाउन ले आए। वो क्या शिर्क था, वो किस किस्म का शिर्क था? मिसाल के तौर पर जिसने मुशरिकीन मक्का ने किया था, वो क्या करते थे, बुत जो बनाए होते थे वो कौन बुत थे, या जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जो बुत बनाने शुरू किए थे वो कौन बुत थे? नूह अलैहिस्सलाम से पहले जो शिर्क आना शुरू हुआ था वो भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बातें कुछ तो रिपीट होती हैं कुछ बातें, लेकिन ऑफकोर्स स्टूडेंट्स चेंज होते रहते हैं इसलिए बातों की रेपिटेशन भी ज़रूरी है। नूह अलैहिस्सलाम को जब भेजा गया था तो वो सोसाइटी जो थी वो शिर्क से भर चुकी थी, लेकिन वो शिर्क इंट्रोड्यूस किस तरह हुआ था कि आदम की नस्ल से आगे आदम के फौरन जो बेटे थे वो उनमें शीत भी थे, जिनका बाइबल में भी जिक्र आता है, हदीस में भी जिक्र आता है, कुरान में जिक्र नहीं आता। शीत अलैहिस्सलाम भी नबी थे, आगे उसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है वो भी नबी थे। तो ओवरऑल जो थी नेकी तकवा वो सोसाइटी के अंदर रहा था, लेकिन ये फिर इतना बुरा किस तरह हो गया था कि नूह अलैहिस्सलाम तक पहुँचे थे? वो हुआ ये था कि शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को गुमराह करना शुरू किया कि जब उनके कोई बहुत नेक लोग मर जाया करते थे, बहुत नेक लोग मर जाया करते थे, तो शैतान आके उनको ये दिल में वसवसा डालता था कि तुम्हारे जो नेक लोग, इतने नेक लोग मर गए। अब देखें उस दौर को इमेजिन करें कि ना तो टीवी था, वीडियोस नहीं बनती थी, ऑडियोज़ नहीं सेव होती थी, पिक्चर्स नहीं खींची जाती थी। शैतान ने ये वसवसा डाला कि जो इतने नेक लोग थे तुम्हारे, इनकी वजह से तुम्हें जो इतनी चीज़ें याद होती थी, उनके जो जगह थी, उनका घर जहाँ वो बैठा करते थे, जहाँ वो बैठ के दीन की बातें बताया करते थे, उन तमाम जगहों को मुकद्दस एट्रीब्यूट किया जाए कि ये तो उनकी जगह थी, ये तो एज सुवेनियर इनको हमने प्रोटेक्ट करके रखना है, ये मुकद्दस जगह थी, जस्ट फॉर रिस्पेक्ट, जस्ट फॉर रिस्पेक्ट। और ये वसवसा दिया कि तुम्हारी आइंदा आने वाली नस्लें जो है ना वो तो इनको भूल जाएंगी, इनकी बातें तो भूल जाएंगी वो, तो इनकी बातों को या इनको किस तरह ज़िंदा रखा जाए इनके कॉन्सेप्ट को, तो क्यों ना तुम इनकी मूर्तियाँ बना लो, तुम इनका इमेज को, तुम्हारे जेहन में अभी है ना, बेशक वो मर गए, तुम्हारे जेहन में तो उनका इमेज है ना, तो उस इमेज के हिसाब से इनके तुम पिक्चर्स बना लो, इनकी मूर्तियाँ बना लो, स्टैचूज बना लो। उन्होंने इसी तरह किया ताकि तुम्हें उनको देख के अल्लाह याद आए। अलबदाया वनहाया इब्ने कसीर ने जो लिखी हुई है उसके अंदर ये वाक़ियात तफसील के अंदर मौजूद हैं रवायात के साथ कि किस तरह ये चीज़ें आई थी, इंट्रोड्यूस किस तरह आई थी नूह अलैहिस्सलाम के अंदर, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर ये चीज़ें आई किस तरह थी। तो पहली जनरेशन के अंदर बड़े सब्र के साथ शैतान ने सिर्फ एक काम किया कि सम हाउ उन लोगों के जो प्लेसेस ऑफ लिविंग थी या थिंग्स ऑफ यूज थे उनको और उनके इमेजेस बनवा लिए, वो पूरी जनरेशन उनके ज़रिए खुदा को याद करती रही, उसके ज़रिए खुदा याद आता रहा उन्हें, बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई हर्ज नहीं था। नेक्स्ट जनरेशन और उसके बाद आने वाली जनरेशन के अंदर क्या हुआ, जब वो ओरिजिनल लोग जिन्होंने वो बनाई थी चीज़ें कि ये इन्होंने क्यों बनाई थी, वो लोग जब फौत हो गए तो अगली जनरेशन के अंदर उन्होंने आहिस्ता से करके शैतान ने लोगों के दिलों के अंदर और वसवसे डालना शुरू कर दिए कि जब खुदा को पुकारना है ना तुमने तो इनकी जहाँ पे ये बैठ के खुदा को पुकारा करते थे वहाँ पुकारा करो आके खुदा को, ये ज़्यादा होली प्लेसेस हैं, ये ज़्यादा होली प्लेसेस हैं। फिर आफ्टर जनरेशन जब वो जनरेशन चली गई जिसका एक ख़ास लेवल ऑफ डिस्टॉर्शन आया था, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इस तरह का वसवसा आना शुरू हो गया कि ये जो थे ना इन, ये बहुत नेक लोग थे, इनके ज़रिए जो है तुम्हारे बड़े दुआएं मांगा करते थे, तो इनको तुम भी इनको वसीला पकड़ो, उनको वसीला पकड़ना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इस लेवल तक ले आए थे कि ये जो थे ना ये खुदाई ताकतें रखते थे या ये खुदा के बहुत महबूब लाडले लोग थे, अगर इनको राज़ी कर लोगे तो खुदा जो है वो कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। जिस तरह कोई भी लाडला किसी का होता है, हमने अब किसी से सिफारिश करवानी होती है और पता है कि अगले का रिएक्शन जो है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होगा, तो क्या करते हैं, उसका जो भी सबसे ज़्यादा बिलवर्ड होता है उसके ज़रिए सिफारिश करते हैं, तुम जाके इससे बात करो। नंबर वन ये कि एक दफ़ा गुस्सा आना भी था तो वो दब के आएगा गुस्सा, उसके ऊपर इतना गुस्सा नहीं आएगा, और ज्यादा चांस किया कि बात मान लेंगे उसकी, हाँ ठीक है इसने कह दिया तो बात मान लेते हैं इसकी। तो वो कॉन्सेप्ट आना शुरू होगा, आहिस्ता करके उनको मिनी मिनी खुदा बना लिया। इस चीज़ का हरगिज़ इनकार नहीं किया कि वो नहीं है, अल्लाह की हस्ती नहीं है। एडिशन ये कर लिया कि ये जो है ना, ये भी कुछ इख्तियारात रखते हैं, कुछ थोड़ा बहुत इख्तियार इनके पास भी है। यही काम मुशरिकीन ने मक्का ने किया था, अपने नेक बड़े लोग जो थे उनको, और सिर्फ मक्का नहीं बल्कि पूरे अरब के अंदर जितने भी कबाइल आबाद थे, वो अपने अपने बड़े बुजुर्गों के बुत बना के काबे के पास रख लिया करते थे। हर साल जो आना होता था उन्होंने पिलग्रमेज के लिए, तो वहाँ पर रख लिया करते थे। उनमें से कुछ उन्होंने कॉन्सर्ट बना लिए थे कि ये खुदा की बेटी हैं, लात मनात उज्जा, ये उन्होंने कॉन्सर्ट बना लिया कि ये खुदा की बेटियाँ हैं, फरिश्ते हैं और फरिश्ते खुदा की बेटियाँ होती हैं। तो खुदा तो नहीं बनाया, लेकिन ये कह दिया कि हाँ ये जो है ना, ये छोटे छोटे वो हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये पूरी दुनिया के अंदर रहा है, ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर देखें, रोमन सिविलाइजेशन के अंदर देखें। तो एक तो वो गॉड लिखते हैं कैपिटल जी के साथ, ये गॉड है जिसके लिए थ्री एट्रीब्यूट्स होते हैं, ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद है, हर चीज़ देख रहा है, हर चीज़ का इल्म रखता है। ये तीन एट्रीब्यूट्स उसके होते थे। बाकी जो गॉड्स होते थे, ये वीनस गॉड हो गया, ये जुपिटर गॉड हो गया, ये छोटे छोटे गॉड्स होते थे, इनके बहुत लिमिटेड कंट्रोल है। ये गॉड ऑफ लव है बस, गॉड ऑफ हार्वेस्ट है बस, दैट्स इट, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। ये कि फलाना गॉड है या फलाना गॉड है, तो जादू और उनके लेक्चर्स के अंदर मैं बताया था, जो इजिप्शियन गॉड्स भी थे, इवन जो गॉड ऑफ मैजिक भी था, थॉट भी और आइजिस भी दोनों, वो भी छोटे छोटे लिमिटेड पावर्स रखते थे। ये नहीं कि हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखते हैं, वो लिमिटेड पावर्स होती थी उनकी। है हिंदुस्तान के अंदर भी क्या था, भगवान एक ही माना है उन्होंने, जो महादेव है वो एक ही है, वो एक ही है, बाकी जो है वो छोटे छोटे क्या हैं, वो देवी देवी देवता हैं वो, और वो तो उनकी फैमिलीज की फैमिलीज होती हैं उनके अंदर, इतने हज़ारों की तादाद में ये हैं। और एक लेक्चर के अंदर सुना था मैंने कि पढ़ा तो नहीं है कि 33,000 के करीब उनकी मकदार है, पता नहीं अनगिनत किस्म के हैं वो, उनकी क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उनकी फैमिलीज भी होती हैं, शादियाँ भी होती हैं, तो ये भी होता है, वो भी होता है, वो बहुत अजीब अजीब कॉन्सेप्ट्स हैं। बुद्धिज़्म के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट्स है कि एक के बाद दूसरे जो आपका जन्म होता है, उसके अंदर भी क्या है कि जब इंसान बहुत नेकी तकवा इख्तियार करता रहता है, नेकी 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 पहुँचता रहता है, तो अगले जन्म में वो एक सेमी गॉड का रूप भी इख्तियार कर सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो उस वाहिद के मुकाबले में नहीं आ सकता, वो तो वो अकेला ही है। तो आखिरी शक्ल जो हो गई शिर्क की, वो ये हो गई कि उस खुदा के मद्दे मुकाबल तो किसी को नहीं लाए, लेकिन उसके छोटे छोटे साथ चीज़ें और अटैच कर दें कि ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी अटैच्ड है, कि खुदा की औलाद है या खुदा की बेटियां हैं या कोई मिनी गॉड है, खुदा का कोई कुनबा भी है। जैसा फैमिलीज मैंने बता दिया, हिंदुस्तान के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो फैमिलीज़ का है, यही कॉन्सेप्ट अरब के अंदर था कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कहा रसूल सल्लम से कि आप पूछें तो सही इनसे, ज़मीन आसमान किसने तख्लीक की है, फ़लानी चीज़ किसने की, फ़लानी चीज़ किसने की, हर चीज़ का ये जवाब देंगे अल्लाह। तो जब अल्लाह ने हर चीज़ किया है, तो ये तुम क्या चीज़ें उठा के ले आए हो, फिर इनकी क्या हैसियत है इन बुतों की। तो अल्लाह ताला ने सूरह मरियम के अंदर फरमाया हुआ है, वकालु तखज़र रहमान वलदा, और इन लोगों ने ये कह दिया कि रहमान ने कोई औलाद जना है, किसी को जना है और रहमान ने, लकद जे तुम शैयन इद्दा, तो ये तो कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी की, बहुत बड़ी इंतहाई खौफनाक किस्म की बात है जो ये कह रहे हैं अपने ज़ुबान से। खौफनाकी का और इस गुस्ताखी का क्या आलम है, तकादु समावात तो ये तफत्तर ना मिन हो, इसका आलम यह है कि आसमान जो है वो फट जाएगा इस कहने की वजह से, वतन शक कुल अर्ज, और ज़मीन जो है ये शक हो जाएगी, वतखरुल जबालु हद्दा, और जो पहाड़ हैं वो गिर पड़ेंगे अपनी मजबूती के ऊपर जो कायम है वो गिर पड़ेंगे, ना ज़मीन आसमान तहस नहस होने को है कि इस कदर गुस्ताखाना बात की है। जब किसी के बहुत बड़े पावरफुल बंदे के दरबार के अंदर अगर कोई बहुत बदतमीज़ी की जाए, तो वो जिस तरह का खौफ और लर्जा तारी हो जाता है, वो उसको अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि जो जिस तरह की बदतमीज़ी और गुस्ताखी ये कर रहे हैं, इसके करीब क्या है कि अगर अल्लाह ताला हलीम ना होता, अल्लाह ताला की सिफत में से एक सिफत है हलीम, हलीम होता है जो चांस देता है, डिले करता है मैटर्स को, अगर ये बात ना होती तो ज़मीन व आसमान फट जाते, पहाड़ जो हैं गिर पड़ते, ज़मीन शक हो जाती अगर अल्लाह ताला इस बात को एक्सप्रेस कर बात कर देते कि इतनी बुरी बात की उन्होंने। अन दाउल रहमान वलादा, इस गुस्ताखी के ऊपर कि रहमान के यहाँ कोई औलाद हुई है, वमा यम बगील रहमान अय यत्तखिज़ा वलादा, और रहमान की शान के मुताबिक ये नहीं है, ये इंतहाई बदतमीज़ी वाली बात है कि रहमान के साथ तुम ये असलूब अटैच करो कि उसके यहाँ औलाद हुई है। तो ये हो गई जो बड़ा शिर्क मैंने बताया था उसकी पहली बात, या अल्लाह के मद्द मुकाबल किसी और हस्ती को उठा के उसके लेवल तक ले आए, पहला कुफर, और बाकी जो उसके शेड्स हो गए। अब बड़े ही शिर्क के अंदर, जो बड़ा ही गुनाह था, उसके अंदर उसका पार्ट टू जो है वो है जिसको मैंने कहा था, जो डिफ़िकल्ट टर्म के हिसाब से क्या है, असमा व सिफात, एट्रीब्यूट्स, नेम्स अल्लाह ताला के और अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स, उसके अंदर अगर शिर्क करना। अल्लाह ताला के जो नाम हैं, जो 99 नाम हैं, और रसूल सल्लम ने ये भी फरमाया जो इनको याद करेगा उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि भाई याद कर लिया, कख नहीं पता मतलब क्या है, गौर व फिक्र करके और इस बात के ऊपर यकीन कर लेगा, उसको ये चीज़ का नॉलेज हासिल करेगा और याद कर लेगा अल्लाह ताला के नाम, उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला का सही तरह का तारुफ उसे हासिल हो गया है, अब जो है वो गुमराहियों में नहीं पड़ेगा। अल्लाह ताला के नामों में क्या है, रहमान है, रहीम है, रज़ाक है, खालिक है अल्लाह ताला, अलीम है, सुनने वाला है, समी है अल्लाह ताला, बसीर है अल्लाह ताला, देखता है अलहई है अल्लाह ताला, अल्लाह ताला जिंदा है। ये तमाम सिफात जो हैं अल्लाह ताला की, ये जितनी भी सिफात अल्लाह ताला की गिनवाई हैं और बाकी तमाम को मालिक ऐड करते हुए, मालिक भी है अल्लाह ताला, इन तमाम को अगर हम देखें, ये तमाम क्वालिटीज़ क्या हम में नहीं है? हम भी रहम नहीं करते कभी, कभी हम भी गज़बनाक होते हैं, हम भी तो देखते हैं, हम भी सुनते हैं, हम भी तो जिंदा हैं, इल्म हमारे पास भी तो है, हम भी तो खलाक हैं, क्रिएटर हम भी तो हैं, कुछ बनाते हैं ना आखिर। एक तो वो चीज़ें हो गई ना खलाक से आ गया कि जिसने बिल्डिंग बनाई, कुर्सी बनाई, फलानी चीज़ बनाई, हाँ वो चीज़ें भी हैं। आप लोग अभी जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, आप लोग हार्डवेयर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे अपना, वो चीज़ें भी हो गई। तो एक क्रिएशन ही हो रही है ना ये वाली, तो खलाक हम भी हैं, रज़ाक हम भी हैं, हम भी तो रिस्क देते हैं। अगर बिलफर्ज मेरी कंपनी है, मैं उसके अंदर कोई अर्निंग कर रहा हूँ और मैं बिज़नेस चला रहा हूँ, तो जो एम्प्लॉज़ होंगे उनको मैं दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं उन्हें, तो मैं भी रिस्क दे रहा हूँ उनको। तो हाउ टू कंपेयर, ये तो कॉमन वर्ड्स हैं अल्लाह ताला और हमारे बीच में, ये तो कॉमन वर्ड्स हैं। और अगर यहाँ पर जो असमा व सिफात वाली बात है कि अल्लाह ताला जिस तरह सुनता है वो तमाम चीज़ें, उनके अगर मद्दे मुकाबले ले आए किसी और को, किसी और हस्ती को, तो ये हो जाएगा एक और बहुत बड़ा शिर्क। हाउ टू डिस्टिंग्विश कि रहमान का जो रहम है उसके रहम में और मेरे रहम में क्या फ़र्क है, रहमान के इल्म में और मेरे इल्म में क्या फ़र्क है, रहमान के रज़ाक में और मेरे रज़ाक होने में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है इन दोनों के अंदर। तो नंबर वन चीज़ ये है कि सबसे पहले अल्लाह ताला का हर असमा जो है, अल्लाह ताला का हर असमा जो है, पहले तो दो डिविजन्स बहुत बड़ी कर लें। अल्लाह ताला की हर चीज़ एब्सोल्यूट है, हर चीज़ एब्सोल्यूट है, वो इन रिलेशन टू सम अदर थिंग नहीं है। अल्लाह ताला की हर चीज़ एब्सोल्यूट है, हमारी हर चीज़ रिलेटिव है। अलअज़ीज़ जो है वो अल्लाह ताला के नाम है, लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान के अंदर मेंशन किया हुआ है सूरह यूसुफ़ के अंदर कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वो बिक के आए थे, बिकते बिकते ग़ुलाम बनते बनते कहाँ तक पहुँचे थे, जिस बंदे तक पहुँचे थे उसका नाम कुरान में अज़ीज़ आया हुआ है। अज़ीज़ होता है जो बहुत अथॉरिटी रहता है, तो वो भी कोई अथॉरिटी वाला बंदा था, प्राइम मिनिस्टर समझ लें बादशाह का था वो, या बहुत बड़ा एडवाइज़र था बादशाह का, तो वहाँ पे भी आया है। लेकिन हर बंदे की अथॉरिटी जो है वो किसी और चीज़ से रिलेटिव है। उस अज़ीज़ की अथॉरिटी कितनी थी, जितना उस बादशाह ने उसको इजाज़त दी थी। अगर बादशाह की इजाज़त नहीं होगी तो बादशाह के मर्जी के ख़िलाफ़ वो काम नहीं कर सकता था। उसके नीचे जितने लोग थे वो सब उसके आगे आंसरेबल थे, उसके और जितने नीचे लोग थे वो उसके आगे आंसरेबल थे, जो फ़ौज में थे सिपाही थे वो आगे किसी और के आंसरेबल थे। बादशाह ख़ुद की क्या हैसियत होती है, बादशाह ख़ुद अपनी राया के आगे आंसरेबल होता है। और इसकी एक मिसाल कुरान के अंदर आई भी है फ़िरौन की। फ़िरौन तो खुदाई का दावेदार भी था कि जो और खुदा हैं, जितने भी खुदा हैं, उनमें से एक खुदा का अक्स वो होता है जो बादशाह होता है उस वक्त का, अल मलिक है, बादशाह है वो। वो अपने आप को बादशाह, अपने आप को इस हिसाब से अथॉरिटी पावर के अतबार से वो अपने आप को कहता था कि मैं रब हूँ, मैं बड़ा रब हूँ, मैं तो तुम लोगों को पाल रहा हूँ, मेरे तो टुकड़ों पे तुम लोग पल रहे हो पूरे मिस्र वालों। उसने खालिक होने का तो दावा नहीं किया था ना, उसने ये तो नहीं कहा था मैंने चांद बनाया, मैंने सूरज बनाया। वो जो मैं बता रहा था गॉड के कॉन्सेप्ट लिमिटेड थे, वो जिस गॉड की बात कर रहा था, मैं कौन सा गॉड हूँ, वो ये था मैं रब वाला गॉड हूँ, मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ, फिर तुम लोगों को मैं कह रहा हूँ। ये जो नहर और नहार जो है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, कि दरिया जो बह रहा है और मैंने किसको इजाज़त दी है कि इसके खेतों को सैराब करना है, किसको नहीं करना, ये मैंने लीज़ किया हुआ है। वो इस अथॉरिटी में अपने आप को खुदा का दावेदार कहता था, खुदाई का दावेदार अपने आप को इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने आप को कह रहा था। तो वो मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी दी हुई है, तो उसकी एग्जाम्पल क्या है कि फिरौन ने खुद अपने दरबारियों से कहा था कि मुझे इजाज़त दो मैं मूसा को ख़त्म कर दूँ, मुझे इजाज़त दो इस चीज़ की कि मैं मूसा को ख़त्म कर दूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में ये मेंशन किया है, इससे क्या पता लगता है कि उसकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट तो नहीं थी। वो अपने दरबारियों से कह रहे हैं तुम लोग अग्री तो करो ना, एक कंसेंसस पे आओ कि हम इसको मार देते हैं, तो मुझे इजाज़त दो तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। उनके अपने दरबारियों के अंदर वो चल रहा था कि नहीं 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 ये हमें नहीं करना चाहिए। तो बादशाह सलामत फिरौन वो चुप करके बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। ये रीसेंट टाइम्स के अंदर क्या हुआ है, अरब वर्ल्ड के अंदर बादशाहों के साथ क्या हुआ है, और ये अरब वर्ल्ड के अंदर तो अभी आया है, अरब स्प्रिंग जो आया था ये तो अभी रीसेंट बात है। जब ये जो वेस्ट के अंदर वहाँ पे जब डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म आया वो किस तरह आया था, फ्रांस के अंदर जब सबसे पहले ये जो इनकलाब आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उन्होंने अपने बादशाहों को और फैमिली समेत उसके पूरे किंगडम को उठा के पब्लिक के अंदर उनको गर्दनें उड़ा दी थी, उनकी महलों से निकाल के गर्दनें उड़ा दी गई थी उनकी। जो रशिया के अंदर सोवियत यूनियन जो बना है, सोवियत यूनियन जो बना है रशिया, पहले कम्युनिज्म से पहले 1917 तक हुकूमत जो जिन बादशाहों की थी वो ज़ार थे, लिखते तो TSA आ रहे हैं लेकिन ज़ार बोलते हैं उन्हें, कम से कम 200 साल से हुकूमत करते आ रहे थे वो। तो 200 साल के अंदर कितनी ग्रिप डीप हो जाती है, अंग्रेज़ हम पे 200 साल की हुकूमत नहीं की थी अंग्रेज़ ने, तो कितनी लंबी हुकूमत होती है। उन सबको उस फैमिली को ख़त्म कर दिया गया था रेवोल्यूशन के बाद, ये बादशाहों का हाल हुआ था। अरब स्पेन के अंदर क्या हुआ, कद्दाफी के साथ क्या हुआ था, उसने मुबारक के साथ क्या किया था, साले के साथ क्या किया था, इन तमाम मुल्कों के अंदर बादशाहों की क्या बादशाहत थी। जब तक आवाम चुपचाप बांध मान रही है तो ठीक है, जब आवाम जो है उन्होंने कह दिया ऐसी की तैसी इसकी, तो क्या हाल हुआ उसका, जो मुशर्रफ जो था उसका किस तरह मजबूर होकर उसको जाना पड़ा था, जबकि वो क्या कहता था कि ये तो मेरी सेकेंड स्किन है, यूनिफॉर्म तो मेरी सेकेंड स्किन है, फिर किस तरह उसको जाना पड़ा, भागना पड़ा, फिर मुल्क में वापस तशरीफ लाए तो अब क्या हाल हुआ है, और मैं बीमार हूँ, नौ किस्म की मुझे बीमारियाँ लगी हुई हैं, वो मैं लग ठीक रहता हूँ लेकिन बड़ा बुरा हाल है मेरा जी, आप जानते नहीं आप क्या हो चुका है मेरे साथ, अब वो बस मिनट भीगी बिली बना हुआ है कि किस तरह से मुझे बाहर जाने दें, आप देखिए मैं बहुत सख्त बीमार हुआ हूँ, आपको नहीं अंदाज़ा हो रहा। तो ये बादशाहों का हाल ये होता है, अथॉरिटी ये कोई अथॉरिटी नहीं है, ये वाले अल्लाह ताला की अथॉरिटी है, वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एब्सोल्यूट अथॉरिटी। अल्लाह ताला की अथॉरिटी के इंतहा की एग्जाम्पल ये हो सकती है कि अल्लाह अगर चाहे, अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह ताला गुनाहगार से गुनाहगार शख्स को भी जन्नत में दाखिल कर दे, कोई अल्लाह ताला को क्वेश्चन नहीं कर सकता। अल्लाह अगर चाहे फिरौन को माफ़ कर दे, अल्लाह अबू जहल को माफ़ कर दे, कोई ये नहीं कह सकता अल्लाह ताला ऐसे क्यों हुआ है, ये क्या बात हुई, क्योंकि अल्लाह ताला के नाम में अल अज़ीज़ आता है, और अल्लाह ताला इंसानों में सबसे ज़्यादा नेक बंदे को अगर अदल के ऊपर पकड़ना शुरू हो जाए कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता। अगर अल्लाह ताला चाहे तो मुत्तकी से मुत्तकी शख्स को भी जहन्नम में फेंक सकता है, और अल्लाह ताला चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार शख्स को भी जन्नत में डाल सकता है, ये अल्लाह ताला का इख्तियार। अल्लाह ताला चाहे इबलीस को माफ़ कर सकता है, तो ये अल्लाह ताला की इंतहा है अथॉरिटी के, कि कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता अल्लाह ताला के आगे, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता अल्लाह ताला के आगे। ये बातें मैं आगे जाके और एक्सप्लेन करूँगा, हदीस वो बातें भी विद रेफरेंस बताऊंगा, अभी सिर्फ समझाने की हद तक एक मफहूम बता दूँ हदीस का, कि अल्लाह ताला के बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया है अगर तमाम ज़मीन व आसमान, तमाम जिन्नात, तमाम फरिश्ते, तमाम इंसान, तमाम मखलूकात, परिंदे, दरख्त, एवरीथिंग, अगर सब के सब, सब के सब अल्लाह ताला की बगावत के ऊपर उतर आए, अल्लाह ताला के नाफरमान हो जाएं, तो हदीस के अंदर आता है, हदीस कुदसी के अंदर क्या आता है, अल्लाह ताला की सल्तनत में कोई ज़रा बराबर कमी नहीं होने वाली। और अगर तमाम के तमाम ज़मीन और आसमान सब के सब जो हैं वो अगर अल्लाह ताला के ताबे हो जाएं, फरमाबरदार हो जाएं, कोई एक बंदा भी, कोई एक मखलूक भी, इबलीस समेत हर कोई जो है वो अल्लाह ताला के आगे सजदा सजूद हो जाए, फरमाबरदार, ताबेदार, बहुत ओबीडियंट हो जाए, तो अल्लाह ताला ने कहा है इससे मेरी सल्तनत में कोई इजाफा नहीं होगा। हमारा क्या होगा कि मेरी हर चीज़ आप पे डिपेंडेंट होगी, आप लोगों का फीडबैक अच्छा होगा तो मेरी बात बन सकेगी। मैं एब्सोल्यूट तो नहीं हूँ, मैं ऊपर से भी पकड़ा हुआ हूँ, नीचे से भी पकड़ा हुआ हूँ, दाएँ बाएँ से भी पकड़ा हुआ हूँ, हम लोग तो हर चीज़ रिलेटिव चीज़ में फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला की हर चीज़ जो है वो एब्सोल्यूट मायनों के अंदर है। हमारा इल्म किस हिसाब से है? हमारा इल्म ये है कि रिलेटिव नॉलेज है। कुछ चीज़ों का तो इल्म बहुत है, इवन जो पीएचडी भी हैं, जो पोस्ट डॉक्टरेट भी की हुई उन्होंने, उनका कुछ चीज़ों में इल्म बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनका इल्म नाकिस है। बहुत सारे लोग जो किस जिनको सर का खिताब दिया गया, सर आइज़क न्यूटन, कि यार ये तो मार्का मार लिया इसने, उसकी सारी थ्योरीज को बेड़ा गर्क हो गया जब आइंस्टाइन की थ्योरीज आई थी कि हर चीज़ रिलेटिव है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई तो हर चीज़ रिलेटिव है। फिर आइंस्टाइन ने जो कॉन्सेप्ट दिए थे स्पेस के बारे में, उनके ऊपर डाउट्स अब पैदा हो रहे हैं जब स्टीवन हॉकिंग ने अपनी बुक लिखी है स्पेस के बारे में, और उसने अपना कॉन्सेप्ट दिया है कि स्पेस वैक्यूम को नहीं कहते बल्कि एक ब्लैक ऑब्जेक्ट है, ब्लैक मैटर उसने नाम दिया उसका, तो जिसको हम बड़े से बड़ा भी कहते हैं, जिसका दिमाग, आइंस्टाइन जो मरा था गालिबन 1955 में मरा था, तो उसका बॉडी को दफना दिया गया, उसके ब्रेन को प्रिजर्व रखा गया है कि अगर साइंस ने इतनी तरक्की की तो हम इसके ब्रेन से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो उसकी अपनी की भी बातें गलत हैं। तो हमारे यहाँ जो इल्म और ये चीज़ें, ये नाकिस हैं, बुरा हाल है इनका। एक टाइम तक आपको बहुत आ गया, फिर वो जाना भी शुरू हो जाता है। प्रेसिडेंट रेगन था अमेरिका का, उसकी एग्जांपल देखें आप। अब वो अमेरिका का प्रेसिडेंट कोल्ड वॉर के ज़माने के अंदर, हम जहाँ पे कह रहे होते हैं हम तो अंदाजे लगा रहे थे ना कि CIA ने ये किया, फलानी एजेंसी ने ये किया, फलाना हुआ था, उसको तो सब कुछ पता होगा ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट को तो सब कुछ पता होगा, सारी इंटेलिजेंस की तमाम बातें, हम तो अंदाजे खबरें पढ़ रहे होते हैं, तुक्के मार रहे होते हैं, उसको तो हर बात का पता होगा किस कदर पावरफुल पोजीशन के अंदर वो होता है। उसके साथ क्या हुआ था, उसको दिमागी बीमारी हो गई थी कि मेमोरी लॉस, पहले उसको करंट मेमोरी लॉस हुआ, पुरानी बातें याद है, करंट मेमोरी बस लॉस हो रही है, भूलता जा रहा है, ऐसा करके ओल्ड मेमोरी भी जा रही है उसकी, फिर और जाती जा रही है उसकी, कि उसने लोगों को पहचानना छोड़ दिया, उसने ये भूल गया कि मैं प्रेसिडेंट था, मैं क्या था, वो था, एंड में इतना बुरा हाल हो गया, इतना हवास बाख्ता बेवकूफ़ों की तरह था हो गया था वो, कि उसको सवाए अपनी बीवी के अलावा किसी को नहीं पहचानता था, और अपने ईयर्स के आखिरी उम्र के अंदर 90s एज थी उसकी जब वो मरा था, तो जब वो मरा है उस वक्त अपनी बीवी तक को पहचानना छोड़ दिया था, उसे कख नहीं पता था मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या है, क्या मामला है, ये मेरे साथ क्या करें, क्यों मुझे हॉस्पिटल में रखा हुआ है, क्या है, कुछ नहीं पता था उसे। तो हमारे इल्म का ये हिसाब होता है, अल्लाह की हर चीज़ एब्सोल्यूट है, हमारी हर चीज़ रिलेटिव है। फिर इसके साथ साथ तीन चीज़ें मैंने समझाई थी आयतुल कुर्सी वाली क्लास के अंदर भी, कि अब तीन बातें ऐसी हैं जो कि अल्लाह ताला की हर सिफत को हमसे इंडिपेंडेंट कर देती है, अल्लाह ताला को बहुत एक्सट्रीम कर देती है। किस तरह? अल्लाह ताला की हर चीज़ इनफाइनाइट है, हमारी हर चीज़ फाइनाइट है, कैलकुलेटेड है, नोन है, बस इससे ज़्यादा नहीं आपको आता, आपके अंदर बहुत ताकत है तो बस इससे ज़्यादा ताकत नहीं आपके अंदर। नंबर टू ये हो गया कि अल्लाह ताला की हर चीज़ अल्लाह ताला की अपनी पर्सनल ज़ाती है, हमारी हर चीज़ ग्रांटेड गिफ्टेड फॉर अ टाइम है, ज़िंदगी जो मिली हुई है मैं कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में, मैं उसको बढ़ा नहीं सकता, मैं उसको कम नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने तो इवन ये भी कहा है कुरान के अंदर कि अल्लाह है जो मारता है मारता है, वरना किसी बशर के बस में नहीं है कि वो अपने आप को खुद मार सके, इवन अपने आप को मारना भी बस में नहीं है, आप बिल्डिंग से छलांग मार दें अल्लाह ताला आपको बचा भी सकता है, वो और बात है जो हड्डियाँ टूटी होंगी ना उसका भी दर्द जो आपको होगा, वरना अल्लाह ताला बचा भी सकता है उस चीज़ से भी। नंबर थ्री बात वो ये कि अल्लाह ताला की हर चीज़ फ्रॉम एवर फॉर एवर है, अल्लाह ताला के इल्म में कभी इजाफा नहीं हो रहा, वो नई बात पता लग गई आज, अच्छा फलानी बात मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, ओ हाँ ये बात भी हो गई आज, तो अच्छा वो देखो वहाँ पे ये हुआ है, नाउज़ुबिल्ला ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हमारे साथ होता है, हम विद एक्सपीरियंस विद टाइम विद तजर्बा हम चीज़ें सीखते हैं समझते हैं, हमें पता लगता है कि क्या है। अल्लाह ताला की बड़ी से बड़ी मखलूक क्यों ना हो इल्म के अतबार से, या कमतर से कमतर क्यों ना हो, फरिश्तों के अंदर जब जिब्राइल और ये तमाम फरिश्ते थे जिनके सामने आदम को पेश किया गया था, तो क्या कहा गया था कि तुम बताओ इन चीज़ों के नाम, जो भी चीज़ें थी इन चीज़ों के तुम नाम बताओ। इसकी एक्सप्लेनेशन वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसके अंदर मैंने की भी है कि मुराद क्या थी इससे, कि किन चीज़ों के नाम आदम से कहे गए थे। उन्होंने क्या कहा था, कालू सुभानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, इल्ला हमें तो पता ही नहीं आप किन चीज़ों की बात कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ उतना ही आता है जितना आप दे चुके हैं हमें इल्म। जिब्राइल समेत सब ने ये जवाब दिया था। अब उसके बाद मखलूकात के अंदर और तमाम मखलूक के अंदर सबसे टॉप मोस्ट हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके वाकयात आप पढ़ें तो उनके इल्म का क्या हाल था, जब उन पर वही आई थी उनको पता था क्या हो रहा है मेरे साथ, उन्होंने जाके घर जाके किसके जिक्र किया था, खतीजा रज़ी अल्लाह ताला ने से कहा कि क्या कहा था कि मुझे तो अपनी मौत का खौफ है, मुझे लग रहा है मुझे पोजेशन हो गया, कोई जिन आ गया है, या मेरे साथ पता नहीं क्या मामला हो गया, उनको तो पता नहीं लग रहा था हो क्या रहा है। बाद में जाके और बात हुई, लेकिन کتنا ایکسپوجر ہوا تھا,
کوئی توہین کی بات نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. جب یہ افواہ پھیلی تھی صلح حدیبیہ کے وقت کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, بیعت لی تھی, اب ہم نہیں جائیں گے واپس جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں اتار لیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ذاتی علم کی بات ہوتی تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ جاتا نا کہ نہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں شہید ہوئے تھے, یہ صرف جھوٹ بتائی گئی ہے بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یقیناً مخلوقات میں سے سب سے زیادہ علم ہوگا, ٹھیک ہے, جس کو ہم نہیں جج کر سکتے کتنا ہوگا, وہ تو ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے اور وہ جہاں پہ ہم تو ہائٹ بھی نہیں ناپ سکتے. ہمالیاز کے پاس کھڑے ہو کے کچھ دیکھ کے بتا سکتے ہیں ان میں سے کون سی چوٹی زیادہ بڑی ہوگی, وہ تو ہر چیز یوں لگ رہی ہوگی کہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ٹاپ کیا ہے اس کی. تو یہ انبیاء اور جتنے بھی ہیں ایسے لوگ, ان کا یہ معاملہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نہیں جج کر سکتے کہ ان کے پاس کتنا علم تھا, لیکن بہرحال ایک پیک ضرور ہے, جتنا مرضی علم تھا ایک پیک ضرور ہے. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا قیامت کب آئے گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, اس کا علم صرف اللہ کو ہے. بہت ساری باتوں پتہ بھی تھیں قیامت سے ریلیٹڈ, کتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں, وہ دجال کے لیکچر میں نے بتایا تھا, لیکن اس کے باوجود بہت ساری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ اس کا علم جان رکھتا ہے. تو یہ تمام مخلوقات میں, ابلیس سمیت تمام مخلوقات میں, اللہ تعالیٰ اور مخلوق کو ڈسٹنگوش کرنے والی بات پہلی ڈویژن کے بعد کے ریلیٹو اور ایبسلوٹ کے فرق کے بعد, اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے, باقی تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب علم دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ علم آیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا ہمیں اتنا سمجھ لگتی جا رہی ہے بات کی, اللہ تعالیٰ چاہے گا تو واپس بھی لے لے گا, ہم اون نہیں کرتے تھے اس چیز کو, ہماری یہ چیز کبھی سے تھی نہیں. ہماری علم بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے, ہماری طاقت بھی بڑھتی ہے کم ہوتی ہے, ہماری صحت بھی بڑھتی ہے کم ہوتی ہے, آنکھیں جو تھیں ان کی کوالٹی بڑھتی ہے کم ہو جاتی ہے, پھر کبھی موتیا ہو گیا آنکھوں میں, کبھی آپریشن کروانا پڑ رہا ہے, کبھی کچھ ہو گیا, یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ پاسبل ہو سکتی ہیں. ابھی جس کو ہم بہت مشکل تھا, ابھی ہم جس کو مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بےچارے ان سے چلا نہیں جاتا, یوں یوں کر کے چل رہے ہوتے ہیں, کمر جھکی بھی ہوتی ہے. اگر ہماری اتنی عمر ہوئی تو اس مصیبت میں ہم بھی پڑیں گے, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اس عمر تک نہ پہنچیں ہم لوگ, ارزل العمر تک نہ پہنچیں. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اللہ اور مخلوق کو ڈسٹنگوش کرنے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز انفائنائٹ ہے, ہماری ہر چیز فائنائٹ ہے, اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اپنی ہے, ہماری ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے, ہماری ایک چیز کبھی نہیں تھی, ہمیں وتھ ٹائم اللہ تعالیٰ نے دی اور اللہ تعالیٰ واپس بھی لے لیں گے. اللہ تعالیٰ کی ہر کوالٹی ہر ایٹیٹیوڈ ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ سے ہے, جو رسک ہو گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو مل رہا ہے ہم اس میں سے آگے سے دے رہے ہیں, وہ بھی ایز آزمائش ہی ہمارے لیے. ویسے اس بات کے اوپر نا کچھ لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں کہ جو رزاق کا لفظ ہے نا یہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا, جبکہ ایسی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر یہ استعمال کیا ہوا ہے, بلکہ آپ نے اکثر دکانوں کے اندر دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے لوگوں نے واللہ خیر الرازقین, اللہ تعالیٰ تمام رزق دینے والوں میں سے بہتر رزق دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی رزق دینے والے ہیں, میں ان سب میں سب سے بہتر ہوں. تو آف کورس یہ ٹاپک کنٹینیوڈ ہے, لیکن اب یوں سمجھ لیں کہ جو بڑا شرک تھا وہ ٹاپک ختم ہوا. اب جس سے میں نے ایک ٹاسک کا آغاز کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ, کہ نہیں ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ کے اوپر لوگ, إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, مگر یہ کہ ضرور کوئی نہ کوئی شرک کرتے ہیں. جو اتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں نا, جتنے بھی مسلمان ہیں, ان میں سے اکثر لوگ شرک کرتے ہیں. ابھی تک جو باتیں آپ کو بتائی ہیں ان میں سے تو ہم نہیں فال کرتے تھے کسی کیٹیگری میں, ہم تو خدا کو ڈینائی نہیں کرتے, ہم تو دو خداؤں کو نہیں مانتے, ہم ٹرینٹی کو نہیں مانتے, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ گاڈ نے یہ روپ اختیار کر لیا تھا, ہم تو ان میں سے کسی چیز کو نہیں مانتے, اور نہ ہی ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلانا اور اللہ جو ہے نا وہ اپنی صفت کے اعتبار سے برابر ہیں, ایسی بات نہیں مانتے. اب جو آگے شروع ہوگا نیکسٹ کلاس آنورڈس, اس کے اندر وہ ہوگا جو ہمیں ایڈریس کرتا ہے, کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے. تو یہ ہم سب کے لیے کوسچن بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا میں تو نہیں شرک کر رہا کہیں پر. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب علیک.